ओम शांति। आज हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व उपस्थित है जिनके बारे में कहा जाए कि सेवा और साधना के प्रति समर्पण और संतुलन के मिसाल देखना हो तो बाबा के लाखों में एक नूरे रतन अपनी वाणी और सेवा दोनों से परमात्मा पिता को प्रत्यक्ष करने वाले सर्व के प्रिय डॉक्टर सतीश भाई गुप्ता जी का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सभी एक हाथ की ताली से भाई जी का स्वागत करेंगे। आप 40 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और 1995 से ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग को अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा एक प्रयोगशाला में परिवर्तन करने क्रांतिकारी कार्य किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजयोग कितना तर्क सम्मत और सिद्धांतिक सिद्ध होता है आपने अपने प्रयोगों से प्रमाणित किया है। ज्ञान और योग के गहन अभ्यास के अनुभवों से आप स्वयं अनुभवों के शिखर पर पहुंचे ही है, लेकिन अपने इन अनुभवों से सारे ब्राह्मण परिवार को भी आपने पुरुषार्थ के नए आयाम बताए हैं। तो दूसरी ओर हृदय चिकित्सा के अपने कार्य क्षेत्र को ही आपने योग की प्रयोगशाला और सेवा का माध्यम बना लिया है। आप यज्ञ के केड ग्रुप की स्थापना के निमित्त बने जिसके माध्यम से राज्यों की शक्ति के द्वारा कैसे दिल को स्वस्थ किया जा सकता है, कहीं गंभीर हृदय रोगियों को भी राज्यों के द्वारा स्वस्थ करके आपने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया और इस तरह अनेक दिल के रोगियों के दिल को ठीक करके उनके दिल में दिलाराम बाप को बिठा दिया और उन्हें बाबा का बच्चा बना दिया। अगर आपकी लौकिक डिग्रियों और सेवाओं के लिए मिले हुए सम्मान की बात करें तो यह नहीं बताना पड़ेगा कि कौन सी डिग्रियां और सम्मान आपको प्राप्त है, बल्कि यह सोचना पड़ेगा कि कौन से प्राप्त नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान की ही तरह वहां भी आप नंबर वन रहे हैं। अनेक डिग्रियां और अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपको प्राप्त है। बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा, क्योंकि उनका नाम ले तो आधा समय केवल उन उपलब्धियों को गिनाने में ही निकल जाएगा। इस प्रकार ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी शिव बाबा की श्रेष्ठ रचना, श्रेष्ठ उदाहरण डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी से अभी हम सुनेंगे कि अतीन्द्रिय सुख और आनंद का अनुभव से हम कैसे भरपूर हो और खुद को मालामाल करेंगे। आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, धर्मशाला भाई जी और
धर्मशाला
और शाहबाग धर्मशाला, शाहबाग अलग है ना,
कमलेश दीदी के,
कमलेश दीदी हाँ,
बहुत अच्छा।
और दूसरा है कौन सी दीदी, नूतन दीदी।
चलिए इस विषय पर रुझान रुझान करने से पहले हम चलते हैं एक बार अपने उस प्यारे परम धाम में बाबा के पास। देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट लीजिए। मैं शरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूं। चलिए उस बाबा के पास कंबाइंड हो जाए, उस पावर हाउस से। ओम शांति। देखिए आज बाबा की मुरली ने भी सुबह में क्या सुनाया, क्या बताया बाबा ने मुरली में आज, मीठे बच्चे क्या बताया, हम आत्मनिंदे सुख का अनुभव कब कर सकते हैं, जब हमारा सर्व संबंध एक बाप से हो ना। एक भी संबंध की कमी है तो बाप से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और इस संगम ही एक ऐसा समय है पूरे 5000 वर्ष में संगम युग, किसी के लिए 100 वर्ष है, किसी के लिए 50 वर्ष है, किसी के लिए 10 वर्ष है, किसी के लिए 5 वर्ष है, और किसी के लिए 2 वर्ष भी हो सकता है, राइट। वो 2 वर्ष ही 100 साल के बराबर है ना। तो ये थोड़ा सा समय है जिसमें हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, आनंद का अनुभव कर सकते हैं, राइट। और किसी समय कर सकते हैं, सत्यंग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, कर सकते हैं। वह सुख का अनुभव तो होगा, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा, और आनंद का भी वहां अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव नहीं होगा। आनंद का अनुभव होगा किंतु अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव, अति आनंद का अनुभव नहीं होगा, राइट। तो ये समय ही है अतीन्द्रिय सुख और आनंद की स्थिति से भरपूर होने का। अगर ये समय हमने गवा दिया, किसमें 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 गवा देते हैं, इंद्रियों के सुख में, राइट। तो क्या होगा, इंद्रियों का सुख तो हमने कितने कितने जन्म भोगा है, 63 जन्म भोगा है ना। 63 जन्म क्या किया, इंद्रियों के सुख में गए, उसी से हम, उसी कारण हम दुखी भी हुए हैं, इंद्रियों के सुख के कारण हम दुखी भी हुए हैं। और ये समय थोड़ा समय मिला है अतीन्द्रिय सुख आनंद से भरपूर होने का, क्योंकि इंद्रियों का सुख क्या होता है, विनाशी होता है। इंद्रियों का सुख, इंद्रिया माना देखने का सुख, पढ़ने का सुख, सुनने का सुख, सूंघने का सुख, बोलने का सुख, खाने का सुख, पीने का सुख, ये क्या है, छूने का भी सुख होता है, कोई बहुत कपड़ा अच्छा है, कोई चीज़ अच्छी है तो उसको छूने का सुख होता है ना। ये इंद्रियों का सुख क्या है, विनाशी है, क्या विनाशी है, विनाशी है, विनाशी है। आज है क्योंकि इंद्रियां भी विनाशी है और वो सुख भी विनाशी है, और ये सारे सुख अल्प काल के हैं, है ना। क्या कहते हैं, अल्प काल का सुख कागविष्ठा के समान। समय से लोग बोलते हैं ना, अब कागविष्ठा का सुख क्यों कहते हैं, आपका कागविष्ठा मतलब कव्य की उल्टी है ना। कव्य की उल्टी कैसी होती है, देखी कभी आपने, देखी नहीं, देखी। मुझे याद है जब मैं MBBS किया और इंटर्नशिप कर रहा था, करने के बाद उस समय हाउस जॉब होता था एक साल का, तो हम हॉस्टल में रहते थे, और सुबह सुबह दिल्ली में थे ना, तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज था ना जो, उसके परली तरफ शांति था, राजघाट था, महात्मा गांधी की समाधि। तो हम संडे के दिन क्या करते थे, यूजली सुबह सुबह ड्यूटी नहीं होती थी तो सुबह सुबह हम तैयार होकर के और वहाँ घूमने जाते थे। रास्ते में दरियागंज आता था, चौक था वहाँ पर, जो मारवाड़ी लोग होते हैं ना दरियागंज वाले, वो सुबह सुबह वहाँ दान डालते थे, बाजरा या कुछ डालते थे कबूतरों के लिए। तो एक दिन मैं थोड़ा देर हो गई निकलने में, तो रास्ते में देखा हमने कबूतर, वो जब दान डालते हैं वहाँ कई सारे मोती पड़े हुए थे, चमक रहे, धूप निकली हुई थी। तो मैंने कहा यहाँ मोती कैसे आ गए, कहाँ से मोती आए, तो बहुत चमक रहे थे। तो मैंने उसको, फिर मेरे सामने कौवे ने अपने मुंह से निकाला वो मोती, मोती वो मोती मोती के समान वो भी चमक रहा था। तो मैं कौवे कौवे के मुंह से मोती निकलते हैं क्या, तो बड़ी एक होती ना जिज्ञासा पैदा होती ना। अब मैं क्या सोचा, मैंने कहा पता नहीं इसको मैं छूं तो पता नहीं क्या होगा, पर चमक तो जैसे मोती रहा है। तो मैंने उल्टे हाथ की छोटी उंगली ना ये वाली, उससे उसको छुआ, था तो वो उल्टी उल्टी थी, तो मतलब जैसे ही वो छुआ तो उल्टी थी, गंदी थी, और नाक के इसके दूर से ही बदबू आ रही थी उसमें, चमक तो मोती की तरह रहा था, और मैं नाक के पास तो लाने के दूर यहीं से बदबू आ रही थी। तो मैंने हाथ ऐसे वहां से साफ किया थोड़ा सा, पर साफ हुआ नहीं, मैं वापस हॉस्टल में गया, एक बार धोया, दो बार धोया, मतलब आधा घंटा धोता ही रहा साबुन से, तो भी बदबू आती रही। और कितने साल हो गए इस बात को, मतलब 45 साल हो गए इस बात को, अभी तक इसमें बदबू आती है। ये उंगली काट तो नहीं सकता मैं, पर अभी तक इस उंगली को मुझे अच्छी नहीं लगती है ना, इस उंगली से छुआ था ना मैंने। तो ये जो दुनिया के जो सुख है ना, दुनियावी सुख है, इंद्रियों के सुख है, ये कागविष्ठा के, मतलब ये कौवे की उल्टी के माफिक चमकते तो हैं, बाहर से बहुत आकर्षक लगते हैं, है ना। जैसे हम सोचते हैं हम बड़े होंगे MBBS डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम, पर MBBS डॉक्टर नाम बनने के और ही बिजी हो गए ना, हमें सुख मिलेगा सुख के बजाय दुख ही मिल गया, शादी करेंगे तो और सुख मिलेगा सुख के बजाय, सबको सबका अनुभव है कितना सुख मिला शादी करके, है ना। सुख मिला ना सबको, बच्चे बच्चे हो जाएंगे तो और सुख मिल जाएगा, सुख मिला, कार ले लेंगे एक सुख मिल जाएगा, सुख मिला, एक नया मकान बनाएंगे सुख मिलेगा, जितने भी इच्छाएं करते हैं जितने भी अलग करके सुख क्या है, बहुत सारी चिंता लेकर के आते हैं, बहुत सारी परेशानियां लेकर आते हैं नहीं, और चमकते हैं। एक्चुअली एक बार दादी जी कहती थी जितने भी दुनिया के सुख है ना ये क्या है, डस्टबिन होते ना, डस्टबिन को गिफ्ट पैक में पैक कर दिया गया, गिफ्ट पैक का जो है रैपर लगा के ना एक गिफ्ट पैक की तरह आकर्षक लगते हैं, अंदर खोलो तो लेयर बाय लेयर क्या निकलती है, गंदगी निकलती है, बदबू निकलती है, राइट। और हम आधा कल्प इसी में रहे हैं, कभी व्यक्तियों के संबंध, कभी वस्तुओं का संबंध, कभी चीजों का संबंध, कुछ ना कोई पीछे हम भागते रहे, संबंधों के पीछे, व्यक्तियों के पीछे, साधनों के पीछे, उन साधनों से हम दुखी हो गए, राइट। तरह से हम बहुत दुखी हुए, तभी तो बाप को पुकारा ना, कि तो बाप को पुकारने के बाद भी अगर हमने उसे संबंध, ये छोटा थोड़ा समय हम बाप का अनुभव ना करें तो क्या होगा। तो अतिंद्रिय सुख का अनुभव क्या है, कैसे करें, विधि क्या है, अतिंद्रिय सुख का मतलब क्या समझ गए ना हम सभी, अतिमन इंद्रियों से ऊपर का सुख, आत्मा परमात्मा के मिलने का सुख, अंतर्मुखता का सुख, अवैक स्थिति का सुख, अलौकिक स्थिति का सुख, राइट। तीन चीज चाहिए, अंतर्मुखता, अव्यक्त और अलौकिक, तीन अगर हमारी स्थितियां हैं, हम अंतर्मुखी हैं, अव्यक्त रहते हैं, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास किया है और अलौकिक, अलौकिकता थोड़ी भी है तो हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, राइट। तो तीन चीजें बहुत बहुत आवश्यक हैं हमें, अगर प्लस एक तो तीन चीजें अंतर्मुखता, अव्यक्त, अलौकिक, और जो सर्व संबंधों का सुख बाबा से लिए लेंगे, सर्व संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी होंगे, वही बाप से अतिंद्रिय सुख आनंद का अनुभव कर सकते हैं, राइट। कोई एक भी संबंध की कमी होगी ना, मान लो किसी को दोस्त का अनुभव नहीं किया बाबा के साथ, सखा का संबंध नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, वो सदा अतिंद्रिय सुख के अनुभव में नहीं रह सकते, राइट। ऐसे ही मान लो किसी ने बच्चे का अनुभव नहीं किया, या साजन का संबंध, जीवन साथी का अनुभव नहीं किया बाबा के साथ, या टीचर का संबंध, तो वो टीचर तो रोज ही अनुभव करते हैं, सतगुरु का संबंध, बंधु का संबंध, कोई भी एक संबंध, नौ संबंधों में से एक संबंध की कमी है, थोड़ी कमी है, उसके अनुभव की अथॉरिटी नहीं बने, तो सदा अतिंद्रिय सुख स्थायी नहीं दे सकता है, कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी भी वो एक कुछ संबंध हमें दिखाई देगा ना, कहीं भी किसी से मिल रहा होगा ना, तो क्या होगा, हम उसमें फंस जाएंगे। रिटर्न जर्नी ना हमारी, हम रिटर्न जर्नी पर हैं, हम अभी क्या कहां से जा रहे हैं, 84वें जन्म से हमें कहां तक पहुंचना है, 21वें जन्म तक पहुंचना है, राइट। पहला लक्ष्य तो 21वां जन्म है, जहां तक हमें सत्य के सीन सीन भी दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, और फिर वापस 21 से हमें एक पहले जन्म पे भी जाना है, उसे बोलेंगे कंप्लीट रिटर्न जर्नी, राइट। पर रिटर्न जर्नी पर सारे सीन तो आएंगे, जो भी हम जिससे भी हमारे संबंध संपर्क रहे 84 जन्मों में, वो फाइलें खुलेंगी, वो व्यक्ति भी सामने आएंगे जिनके साथ हम थे उन जन्मों में, वो फाइलें भी खुलेंगी और सीन भी सामने आएंगे, और मन की स्थिति भी हमारी वो डावाडोल करेंगे, किंतु अगर बाबा के साथ अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति की होगी तो फिर हम फंसेंगे नहीं, राइट। हम फेल नहीं होंगे, सांप सीढ़ी का सही खेल होता है, हम कहां पहुंच जाते हैं, 96 पे पहुंच जाते हैं, वापस कहां जाते हैं, 3 पे आ जाते हैं, राइट, 2 पे आ जाते हैं, एकदम नीचे आ जाते हैं, एकदम गिर जाते हैं, थोड़ा भी कहीं, इसलिए अतिंद्र सुख आनंद की अनुभूति जिसने कर ली, वो कभी भी फिर सरल संबंधों की बाबा से अनुभूति कर ली, वो कभी भी फिर फंस नहीं सकता है, राइट। और एक चीज और है, अतिंद्र सुख आनंद ऐसी स्थिति है, ये कहें कि जैसे ये स्थिति ऐसी है जिसमें शरीर के भी सभी कर्म भोग देखे, सभी कर्म भोग और कर्मों के हिसाब किताब से भी हम मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि हम बाप के स्नेह में लवलीन है ना, खोए हुए हैं, और ये दोनों स्थितियां कहां की स्थिति है, सूक्ष्म वतन की स्थिति है। अतिंद्रिय सुख को हम स्वीट साइलेंस कहते हैं और आनंद को हम डीप साइलेंस कहते हैं, राइट। दोनों में फर्क क्या है, क्या फर्क है, यस बताइए, कोई बता सकता है, या दोनों सेम ही है। अतिंद्रिय सुख और आनंद में कुछ फर्क है या सेम है। अतिंद्रिय सुख बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति से होती है, माता का संबंध, बाप का संबंध, टीचर का संबंध, सतगुरु का संबंध, बंधु का संबंध और सखा का संबंध, साजन का संबंध, सज्जन का संबंध और बच्चे का संबंध, मतलब सर्व संबंध, भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति बाबा के साथ करते हैं। इसको इसलिए स्वीट साइलेंस कहते हैं, इसमें मिलन की अनुभूति होती है। बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों के मिलन की अनुभूति को अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। और सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, जिसमें सर्व संबंध एक में समा जाए, लवलीन हो जाए, इच्छा मात्र में विद्या की स्थिति में हम चले जाएं, वो स्थिति है जैसे नदी सागर में समा के सागर बन जाए, वो स्थिति आनंद की स्थिति है। उसमें भिन्न भिन्न संबंध नहीं है, सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद। नदी सागर में समा क्या बन गई? सागर बन गई। तो वो है डीप साइलेंस, उसमें आत्मा खोई हुई है, गोइंग बियॉन्ड। आत्मा देव और देह के दुनिया के बंधन के परे एकदम लवलीन हो गई है, हो गई, समा गई है। अतीन्द्रिय सुख में आप भिन्न भिन्न संबंधों की, जिसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख के झूले। बाबा कहता है जितना संगम पर हम, जितना अभी बाबा की गोद, माता पिता की गोदी का और बाबा के दिल तख्त का और भिन्न भिन्न अतीन्द्रिय सुख के झूलों का अनुभव में, झूलों में रहते हैं, उतना ही हम क्या करते हैं भविष्य में रॉयल फैमिली में रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ या लक्ष्मी नारायण के साथ या राधा कृष्ण के साथ हम उतना समय ही रॉयल फैमिली में रहते हैं। आने वाले कई जन्मों में हम रॉयल फैमिली में रहेंगे। कहाँ रहना है अभी, कहाँ का रहना? माता पिता की गोदी में, दूसरा दिल तख्त पर और तीसरा अतीन्द्रिय सुख के झूले। अतीन्द्रिय सुख के झूले कितने होते हैं? बस 56 झूले होते हैं, 56 झूले होते हैं, हैं जी। हाँ, 9 संबंध के झूले तो हैं, वैसे आगे भी झूले तो और भी है ना। 9 संबंधों से तो हमें वो 9 संबंधों के झूले तो भी, पर अलग अलग संबंध से अलग अलग प्राप्ति भी होती है ना, तो उनके भी तो झूले होते हैं ना। तो एक तो 9 संबंधों के झूले हो गए, माता के संबंध का झूला, पिता, माँ झुलाती है ना बच्चे को पालने में, झुलाती है, बाप भी झुलाता है, टीचर भी, प्राप्ति के झूले है ना, और सतगुरु के द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का झूला मिलता है ना, बंधु के द्वारा सारा बोझ हल्का, डबल लाइट होने का झूला। बड़ा भाई क्या करता है? सारा बोझ उठा लेता है, लौकिक अलौकिक बोझ। सखा के रूप में कौन सा झूला मिलता है? सारा मन, दिल बिल्कुल हल्का कर देते हैं, बुद्धि और मन पूरा खाली कर देते हैं, जो बात किसी को बता नहीं सकते उसको बता देते हैं, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। तो माता पिता, माँ के द्वारा जन्म होता है ना, दिव्य ब्राह्मण जन्म होता है, बाप के द्वारा वर्षा मिलता है, तीसरा नेत्र खुलता है, दो गिफ्ट मिलती है बाप के द्वारा, कौन कौन सी? दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तीसरा नेत्र और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, जो एक सेकंड में मुझे आत्मा को सूक्ष्म वतन में, परम धाम में और सुख धाम में अपने लक्ष्य पर पहुंचा सकती है, अर्थात सुख धाम में मुझे अपने महलों में पहुंचा सकती है, राइट। तो माँ के द्वारा क्या मिला? दिव्य ब्राह्मण जन्म। शिव बाबा ही माँ है, ब्रह्मा के द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म देता है माँ के रूप में, और दिव्य ब्राह्मण की फिर हमें अनुभूति होती है, और फिर बाप के रूप में दो चीजें कौन कौन सी? दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का नेत्र और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट। ये दो हमारी बर्थडे गिफ्ट है जो बाप देता है, इसके द्वारा हमें 7 गुणों की एनर्जी का वर्षा मिलता है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सच्चा स्नेह, ये चार चीजें मिलती हैं हमें दिव्य दृष्टि के द्वारा, और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट हमें अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव कराती है, ठीक है, सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं, परम धाम में अशरीर स्थिति का अनुभव कराती है ना, और निराकारी और बीज रूप स्थिति का अनुभव कराती है। खैर, मैं इसमें डिटेल में जाना चाहिए। बंधु के रूप में हमें क्या मिलता है? बोझ हमारा ले लेता है बाबा, लौकिक बड़ा भाई है ना, और फिर सखा के रूप में, सखा के रूप में हमें हर बात शेयर कर लेते हैं। साजन क्या करता है? दैवी गुणों से सजा देता है। साजन का क्या काम होता है? सजने को सजाने का काम होता है, गहने कपड़े लेके आता है ना, तो बाबा हमारा क्या करता है साजन के रूप में? सर्व दैवी गुणों से हमें सजाता है, सर्वगुण संपन्न बनाता है। सजन क्या करता है? सजने का क्या काम है बताओ? सजन का काम है, रिटर्न जर्नी पर सजन साथ रहता है। आपको देखो, जब कभी हम जाते हैं पहाड़ों पर जाते हैं
है ना, तीर्थ यात्रा के साथ में क्या होता है, डॉक्टर साथ रहते हैं ना, क्योंकि हमारी भी रिटर्न जर्नी है, ऊंची चढ़ाई है, तो साथ में सज्जन, पर साजन बनाओ फिर सज्जन बनता है बाबा, बिना साजन बनाए। और ये भी ध्यान रखना है, पहले जन्म होता है माँ के द्वारा, बाप क्या करता है तब दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वर्षा देता है, फिर टीचर क्या करता है सुदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनाता है, फिर सतगुरु क्या करता है मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा अर्थात क्या त्रिलोकीनाथ बना देता है, साकारी अकारी निराकारी स्थिति की ड्रिल सीख जाते हैं हम, बिना पाप कर्म विनाश करे भी हम सूक्ष्म वतन परमधाम की यात्रा कर सकते हैं, आत्माएं परमधाम जा सकती हैं बिना विक्रम विनाश के, पर हमें वर्षा मिल जाता है, मतलब बाबा से एक तरह का मल्टीपल एंट्री वीजा मिल जाता है, मल्टीपल एंट्री वीजा, फ्री वीजा, हम जब चाहे सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं, जब चाहे परमधाम में जा सकते हैं, और जब चाहे सुखधाम में भी जा सकते हैं, राइट, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट के द्वारा और साजन के द्वारा। फिर साजन क्या है, तो पहले ये कितने कितने संबंध हो गए, छह संबंध का अनुभव की अथॉरिटी बनो ना, तब सातवां संबंध अनुभव होता है, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा, सखा से पूरा साफ कर दो ना मन बुद्धि को, तब बाबा की सजनी बन सकते हैं, स्वच्छ नहीं बनेंगे तो क्या सजनी नहीं बन सकते, पूरा खाली करना पड़ेगा, फिर बाबा हमको अपनी सजनी बनाता है, सजनी बना करके हमको ज्ञानों से दिव्य गुणों से ज्ञानों से जा देता है। सज्जन क्या करता है, रिटर्न जर्नी पर हमारे सामने सारे पेपर आते हैं, सारे टेस्ट आते हैं, है ना, सब फाइलें खुलती हैं, पुरानी फाइलें खुलती हैं, सज्जन क्या करता है, रास्ते में आने वाली सब बाधाओं को दूर करते हुए हमें 16 कला संपूर्ण बना देता है, संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बना, हर गुण में 100%, हर गुण कला के माफिक होता है, मधुरता जैसे गुण है, दैवी गुण है ना, इतनी मधुरता जो सामने वाला कुछ भी बोलता रहे कुछ भी कहता रहे तो भी आपकी मधुरता गायब ना हो, इतनी धैर्यता कि कुछ भी हो जाए धैर्यता खत्म ना हो, कला के माफिक हो जाए, वो है 16 कला। 16 कला का ऐसा नहीं कि खाना बनाने की कला, ये करने की कला, वो करने, ऐसे कला नहीं, कौन सी कला, हर गुण 36 के 36 गुण कला के माफिक बन जाए, कला में कुछ भी जैसे 100% हो जाए, 16 कला में 16 आना 100%, और संपूर्ण निर्विकारी बना देता, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पे तो विजय मिलती ही है, साथ साथ इसके बाल बच्चे हैं, चिंता भय जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष आलस्य अलवेलापन वो भी खत्म, इनके बाल बच्चे संस्कार भी भस्म हो जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम 4 नियम 4 मर्यादा में 100% बन जाते हैं, और फिर अहिंसा परमो धर्म, काम विकार से कामनाएं भी खत्म, लाइट का ताज आ जाता है, और क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ इनके बाल बच्चे भी खत्म, तो विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज आ जाता है। तो कौन बनाता है ये, कौन बनाता है, सज्जन बनाता है। और जब ऐसे बन जाते हैं ना हम, संपन्न और संपूर्ण बन जाते हैं, तो फिर बाबा हमारा बच्चा बन जाता है, इसके बगैर बाबा हमारा बच्चा नहीं बन सकता। हाँ वैसे माताएं बच्चा बच्चा कह देते हैं बाबा को, पर जहां जीत वहां जन्म, किसी पतित का बच्चा बनेगा बाबा, बनेगा पतित, कोई भी थोड़ी कमी होगी ना हमारे अंदर, हम उसको बच्चे के रूप में उसका अनुभव नहीं कर, महसूस नहीं, अनुभव नहीं कर सकते, तो बाबा से हमें बच्चे का अनुभव करने के लिए हमें बहुत संपन्न और संपूर्ण स्थिति चाहिए, बहुत संपूर्ण पवित्रता की स्थिति चाहिए, राइट, तब हम हमारा बच्चा बने, तब सुख मिलता है उसे, बच्चे का सुख, राइट, इसे बच्चे का सुख सबसे मुश्किल है, बहुत कम अनुभव होता है, तो ऐसे 9 संबंधों की अनुभूति, और साथ साथ हैं जी, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सजन और बच्चा, ऐसे तो सभी संबंध हो सकते हैं, पर 9 संबंध तो बहुत हमें जरूरी है, जैसा समय जैसा स्थान जैसा कार्य है उस संबंध से बाबा को यूज करें, और ये भिन्न भिन्न संबंधों को यूज करने से हम अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं, और ये भिन्न भिन्न संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी ही हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराती है, राइट, जैसा समय जैसा स्थान जैसा कार्य, बाबा का वायदा है हमसे कि जैसा जैसा स्थान जैसा कार्य जैसा समय होगा मैं आपके साथ उस संबंध से आ जाऊंगा, पर कब आएगा, कब आएगा, जब संपूर्ण पवित्रता होगी, जितनी ज्यादा पवित्रता की डिग्री होगी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी वाली, तो ही बाबा हमारे साथ आएगा, क्योंकि क्या कहते हैं, पवित्रता सुख शांति की जननी है, राइट, तो सुख कब अनुभव होगा, थोड़ी भी पवित्रता की कमी है, किसी भी देहधारी से थोड़ा सा भी अटैचमेंट है, किसी से भी, किसी व्यक्ति वस्तु से, तो हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। सुख की जननी कौन है? पवित्रता। शांति की जननी कौन है? तो अगर थोड़ी भी कमी होगी तो क्या होगा? चलिए अब हम इसमें चलते हैं। तो मैंने बताया, क्या बताया आपको? नो संबंध, सात एनर्जी, ज्ञान का झूला, पवित्रता का झूला, शांति का झूला, सच्चे स्नेह का झूला, अतीन्द्रिय सुख आनंद का झूला, और आठ शक्तियों का झूले। और शक्तियों के झूले भी आठ अलग अलग हो सकते हैं, पर चलो उसको इकट्ठा ही कर देते हैं। ठीक है, कितने हो गए? नौ और सात कितने हो गए? सोलह। और फिर छत्तीस गुण, छत्तीस गुण कितने हुए? छत्तीस गुण, छत्तीस देवी गुण होते हैं ना, है ना, कितने हो गए? वामन हो गए। और चार झूले होते हैं, वो सबके लिए सारा क्लब चलते हैं। कौन से? आज्ञाकारी बनने का झूला। जो आज्ञाकारी होते हैं उनका भी झूला होता है ना, आज्ञाकारी आत्मा नशे में रहती है, अभी भी लौकिक माता पिता का भी आज्ञा मानते हैं तो नशा होता है। वफादार, इस समय वफादारी का झूला होता है, ईमानदारी का भी झूला है, अभी भी है, राइट। और फरमान बरदारी का भी झूला होता है। तो ये कितने झूले हुए? छप्पन झूले हो गए ना पूरे, राइट। तो इतने सारे झूले हैं, अतीन्द्रिय सुख के झूले। तो इतने झूले झूलने के बाद फिर क्या हो जाएगा? आनंद आ जाएगा, है ना। फिर सब कुछ मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। चलिए अब इसकी विधि कैसे कैसे हम इसको महसूस करें, और चलते हैं। देखिए सबसे पहली तो बात है, कोई मनुष्य अतीन्द्रिय सुख आनंद का अनुभव कर सकता है क्या? कोई मनुष्य कर सकता है? बताओ, कोई मनुष्य? मोदी जी कर सकते हैं, ट्रंप जी कर सकते हैं, और कोई? ये जगत गुरु शंकराचार्य कर सकते हैं, बड़े बड़े सन्यासी कर सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख का महसूस कर सकते हैं, आनंद का नहीं कर सकते? ये सिर्फ हम ब्राह्मण ही कर सकते हैं। शिव बाबा ने, हमारे मीठे शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए? दिव्य ब्राह्मण जन्म की स्मृति इमर्ज होनी चाहिए कि मेरा कौन सा जन्म है? अत्यंत सुख का झूला अनुभव करना है, आनंद का झूला अनुभव करना है, तो क्या 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 करना चाहिए? यस, पहले तो दिव्य ब्राह्मण जन्म की स्मृति इमर्ज रहे कि मैं, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया है। दिव्य ब्राह्मण जन्म है ना, जैसे बच्चा जब जन्म होता है तो माँ के गर्भ में बच्चा कितनी देर रहता है? नौ महीना रहता है, चार महीने, पांचों महीने पर आत्मा प्रवेश करती है। उसके बाद तो आत्मा तो पांचों महीने पर प्रवेश करती है, पांच महीने के बाद तो चार साढ़े चार महीने तो आत्मा गर्भ में रहती है ना। माँ से प्राप्ति होती है, खून की प्राप्ति, खाने पीने की प्राप्ति होती है। और माँ को भी क्या होता है, जब से बच्चा पेट में घूमने लगता है तो माँ को भी क्या होता है, माँ के दिल में माँ सब भूल जाती है, उसको सिर्फ क्या याद रहता है? सिर्फ बच्चे का ध्यान रहता है। पति पत्नी, पति माता पिता, सास ससुर सब भूल जाती है, उसी में खोई रहती 24 घंटा। तो सारा दिल में, माँ के दिल में कौन आ जाता है? बच्चा। और बच्चे के दिल में कौन आ जाती है? माँ। बच्चा जैसे आँख खोलता है उसकी सेवा कौन करता है, ध्यान कौन रखता है? माँ। तो बच्चे के दिल में माँ आ जाती है, राइट। दिल में ना, ये दिल नहीं, चेतना, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, जैसे होता है ना, एक होता है ना शूटिंग होता है बोर्ड, उस पर एक बिंदु होता है, बीच में एक गोला होता है, फिर दूसरा गोला, जो बीच वाला गोला है ना, सबसे पहले बिंदु और गोला, वो दिल है। उस में कौन आ जाता है? माँ आ जाती है। ऐसे शिव बाबा जब ब्रह्मा के द्वारा हमको माँ के रूप में दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, तो हमारे दिल में कौन आ जाना चाहिए? शिव बाबा हमारी माँ है, तो कौन है शिव बाबा? कौन है? ज्ञान का सागर, अर्थात सत्य की समझ का सागर, अर्थात एबीसीडी का सागर। एबीसीडी समझते हैं? ए फॉर आत्मा, बी फॉर सी फॉर कनेक्शन मतलब संबंध, और डी फॉर ड्रामा, मैं आत्मा हूं। ये शिव बाबा का मतलब, शिव बाबा का सागर है ना, हमको आत्मा के रूप में देखता है, तो मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध शिव बाबा से है, और मेरे साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो किसके किस अनुसार हुआ है? मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, परमात्मा की डायरेक्शन में हुआ है। चाहे दुख मिला, सुख मिला, धोखा मिला, गाली मिली, अपमान मिला, बीमारियां मिली, किसकी डायरेक्शन में मिली? शिव बाबा की डायरेक्शन में मिली है ना, डायरेक्टर शिव बाबा है ना। मेरे कर्मों के अनुसार हो रहा है, किंतु डायरेक्टर कौन है? ताकि मेरे बच्चे के हिसाब किताब चुकते हो जाए, क्योंकि बाबा कहता है मैं जब तक साथ हूं तभी तुम बच्चे सहन करके समा सकते हो, सहनशील बन सकते हो, किंतु जब मैं साथ नहीं होऊंगा तो क्या करोगे। द्वापर युग में हमने क्या किया, किसी ने हमने एक कुछ गलत किया तो क्या हमने क्या किया, उसको हम ना जाते तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया, भगा दिया उसको अपने स्टेट से भगा दिया। कलयुग में भी यही किया, कलयुग में तो बहुत ज्यादा किया, किसी ने हमको एक सुनाया तो हमने कितना सुनाया उसको वापस, चार सुना। किंतु अभी यह समय है कि हमारे पास बाबा साथ में है, सहनशील सहन शक्ति का सागर है, समाने की शक्ति का सागर हमारे साथ है, सामना करने की शक्ति का सागर हमारे साथ है, सहयोग करने की शक्ति का सागर हमारे साथ है। तो अब हम उसको क्या कर सकते हैं, हमें कर्मों की गुह्य गति पता है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हमें समझ में आती है व्यक्ति मुझे दुख क्यों दे रहा है, मेरा अपमान क्यों कर रहा है, मेरी इंसल्ट क्यों कर रहा है, धोखा क्यों दे रहा है, मैंने इसको धोखा दिया था पिछले जन्म में, दुख दिया था इसलिए मुझे ब्याज के साथ वापस दे रहा है। जब बाबा के हम बचते हैं, बाबा जब हमारा बन जाता है तो हमें ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है, पहले नहीं समझ आती थी। बाबा को जब हम इससे साथ रखते हैं, बाबा से कंबाइंड रहते हैं तो हमें ये कर्म की फिलॉसफी, कर्मों की गुह्य गति समझ में आ जाती है। यस, आती कि नहीं आती, पहले नहीं आती थी अभी समझ में आ जाती है, और हम कुछ कहते नहीं है, हम सहन करके संभाल लेते। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं उनको, सहनशीलता के देव और सहनशीलता की देवियां, ये बोलते ना। हमें कोई हमारे पाप कर्म कैसे भस्म होते हैं, अशरीरी बनने से क्या होता है, अशरीरी बनने से हमारे सहन करने की शक्ति आ जाती है, संभालने की शक्ति आ जाती है, राइट, सामना करने की शक्ति, सहयोग जो हमें तंग कर रहा है उसको भी सहयोग करने की शक्ति आ जाती है। मान लीजिए आप, आपने किसी को डंडे से मारा था पिछले जन्म में, है ना, इस जन्म में वो आपको डंडा मार रहा है, आपने एक डंडा मारा था, वो कितने डंडे मारेगा, कम से कम 100 डंडे तो मारेगा, राइट, उसका डंडा बेचारा गिर गया मारते मारते, फिर क्या करो आप, सहयोग करने की शक्ति का मतलब क्या है, डंडा गिर गया उठा के वापस दे दो, लो भाई सर और मार लो, दे दो भाई सर, हाँ गिर गया ना कोई बात, गुस्सा कर रहा है, अच्छा भाई साहब थक गए ना, पानी पानी पी लो, फिर और गुस्सा कर लो। तो मतलब ये इसे बोलते हैं सहनशीलता, समझ रहे हैं, ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो जब हम ऐसे करते हैं ना तो क्या होता है, तो सहन वो ज्ञान का सागर है, कहां पर है वो, कहां बैठा हुआ है, मेरे दिल में बैठा हुआ। बाबा कहते हैं बाबा कहां रहता है, हम नशे से क्या कहते हैं, बाबा को और कोई स्थान पसंद नहीं है, कहां बैठा है, मेरे दिल में बैठा हुआ है। और हम कहां रहते हैं, बाबा के दिल में रहते हैं, राइट। तो मेरे ये महसूस करना चाहिए, बार बार रिवाइज करो, रियलाइज करो, बार बार रिवाइज रियलाइज, मेरे दिल में कौन बैठा है, ज्ञान का सागर बैठा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे दिल में बैठा हूं, राइट। दिव्य ब्राह्मण जन्म, अगर दिव्य ब्राह्मण जन्म याद है तो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर हमें अतिंद्र सुख की अनुभूति करनी, आनंद में रहना, तो पहले दिल में क्या किसको इमर्ज करना चाहिए, बाबा को, नहीं दिव्य ब्राह्मण जन्म को इमर्ज करो और बाबा मेरे दिल में बैठा है, इसी को बार बार रिवाइज करो, रियलाइज मैंने सच्चे दिल से महसूस करो, बाबा यहां बैठा है, ज्ञान का सागर बैठा है, पवित्रता का सागर बैठा है। पवित्रता माना क्या होता है, अपने सत्य स्वरूप में टिक के दूसरे के भी सत्य स्वरूप को इमर्ज करके व्यवहार करना। बाबा तो है ही आत्मा, और हम कौन है, हमारा सत्य स्वरूप भी हम आत्मा है, परमधाम में भी आत्मा थे, सत्युग में भी हम आत्मा सत्व प्रधान थे, तो बाबा हमारा अनादि स्वरूप देखता है, आदि देवी देवता, इसलिए वो क्या है, पवित्रता का सागर है। कोई डाकू चोर भी होता है ना, उसको भी किस रूप में देखता है, आतंकवादी को भी क्या देखता है, आत्मा के रूप में देखता है ना, अनादि स्वरूप देखता है ना, परमधाम वाला, राइट। तो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, उसको कोई विचार चलता ही नहीं, किसको देखे कोई विचार चलता है, ये क्या करता है, ये क्या करती है, विचार चलता है, शांति, बस कोई विचार ही नहीं चलता, प्रेम का सागर है, कोई कुछ भी करे कैसा भी करे बाबा उसको स्वीकार करता है, उसकी पावर पालना करता है, चोर डाकू बीके नॉन बीके क्या करता है, ये बीके इसको ज्यादा करंट दो, नॉन बीके करंट नहीं देनी, ऐसा है क्या, उसको दुख में साथ नहीं देना, बीके को दे नहीं, सबको साथ बराबर देता है, राइट। वो अतिंद्रिय सुख का सागर है, आनंद का सागर है, और सत्य को परखने की शक्ति का सागर है। देखो सत्य, बहुत सारा सत्य सामने है और बाबा एक सेकंड में परखता है, हम क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये याद है मेरा दिव्य ब्राह्मण जन्म, बाबा मेरे यहां बैठा हुआ है, तो हमारी क्या होगी, सत्य को प्रकट शक्ति जागृत हो जाएगी, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति का सागर है, विस्तार को सार बनाने की शक्ति का सागर है, देव और देखे तो उनका विस्तार है, बाप दादा की गोद सार है, तो हम वहां से बच्चों को देव और देखे दुनिया के विस्तार से बच्चों को कहां ले जाता है, बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंचा देता है, एक सेकंड वहां से भी समेट के अश्री बना के परम धाम घर में अश्री बाप से कंबाइन करा देता है। अश्री स्थिति का वो वहां से समेटने स्थिति का सागर है, अश्री स्थिति का सागर है, निराकारी स्थिति का सागर है। हम कहते हैं अश्री बने, कैसे बने, मेरा बाप अश्री स्थिति का सागर है, वो सदा ही अशरीरी है, वो सदा ही निराकारी है, वो सदा ही बीज रूप है, और मैं कहता हूं मेरे को कैसे बनूं। अगर ये याद रहे मेरा बाबा यहां बैठा, मेरा बाप यहां बैठा, तो क्या होगा, क्या होगा, अश्री स्थिति का सागर, और मैं कैसा हूं, मेरा अश्री बनना मुश्किल है, निराकारी स्थिति का सागर और मेरे को निराकारी बनना मुश्किल है, नहीं ना। तो ये बार 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 अभ्यास करने की आवश्यकता है, ये इमर्ज करो ना, राइट, ये इमर्ज करोगे तो क्या होगा, बीज रूप, मेरा बाप बीज रूप है तो मुझे क्या बनना, मास्टर बीज रूप, है ना। सहन करने की शक्ति का सागर है बाबा, है ना, जो सहन करने की शक्ति का सागर, कितना सहन करता है बाबा, बाबा के बच्चे इतने पुराने पुराने बच्चे शरीर छोड़ के जा रहे हैं, अच्छा कुछ उल्टा काम भी कर रहे हैं, कुछ सीधा काम भी कर रहे हैं, कुछ दुनिया में क्या क्या हो रहा है, बाबा सहन नहीं करता है, वो सहन कुछ बोलता है क्या, संभालने की शक्ति का सागर है, सामना करने की शक्ति का सागर है, और फिर भी सहयोग करता है बच्चों को, बीके हो चाहे नॉन बीके, सबको सहयोग करता ना। और सातों एनर्जी के बैलेंस का सागर है, उसमें सातों एनर्जी का बैलेंस है, जितना ज्ञान है उतनी पवित्रता भी, उतनी शांति भी है, उतना प्रेम भी है, उतना सुख भी, आनंद भी, शक्तियां भी है, सब बराबर है। और जहां सातों एनर्जी का बैलेंस है तो वहां हीलिंग एनर्जी आ जाती है, हीलिंग एनर्जी समझते हैं, हील करता है, इसे सब सब उसको याद करते हैं, कहते हैं हम क्या कहते हैं, डॉक्टर भी क्या कहते हैं, आई क्योर, वो क्या करता है, वो हील करता है, हम नहीं हील कर सकते, हीलिंग कौन करता है, वो करता है। तो हीलिंग एनर्जी कब बनती है, जब सातों एनर्जी का बैलेंस हो। बच्चों में क्या होता है, ज्ञान ज्यादा है किसी में पवित्रता कम है, किसी में पवित्रता है तो शांति कम है, किसी में शांति है तो सच्चा स्नेह नहीं है, किसी में स्नेह है तो अत्यंत इसकी अनुभूति नहीं है, कम है, आनंद की कम है। आज बाबा ने क्या बताया, कितना परसेंट याद में रहते हैं बच्चे, 2%, 1.5%, 1%, है ना, आधा परसेंट, है ना। तो बाबा ने रिजल्ट सुनाया ना बच्चों का, अच्छा लगा, अच्छा लगा नहीं, बाबा के तो क्लास कराने वाले भी ऐसे हो जाते हैं, ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाते हैं पर उनकी स्थिति देखो तो अच्छी नहीं होती, क्योंकि सातों एनर्जी का बैलेंस नहीं है। क्लास बहुत अच्छी कराएंगे, पवित्रता में कहीं कन्या गए कहीं गड़बड़ होगी, है ना, शांति में कहीं गड़बड़ होगी, किसी दुनिया में किसी एक व्यक्ति को भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया। मान लो कल कुत्ते ने काटा था आपको, 15 दिन पहले कुत्ते ने काटा, वो कुत्ते को भी आपने शुभ भावना शुभकामना नहीं दी, तो क्या हुआ, उसके प्रति भी शुभ भावना शुभकामना रखो तब आपको अत्यंत सुख का अनुभव होगा, सुना, इसको बोलते प्यार, है ना, क्यों नहीं हो सकता। उसने काटा बल लगवाओ, अच्छा लगवा लो, पर ठीक है, आपने पिछले दिन में कुत्ते को डंडा मारा था, काट लिया तो क्या प्रॉब्लम है, है ना, हिसाब किताब तो बराबर होगा, नहीं होगा, नहीं ऐसा, जो बोगे वही तो काटना पड़ेगा, नहीं काटना पड़ेगा, सबको तो नहीं काटा उसने, मेरे को ही काटा, क्यों काटा भाई, मैंने मारा था उसको तो उसने मेरे को काटा, वो बेचारा इतने दुख रहा, दुख में रहा, तो मेरे को काटेगा ना फिर, तो सबको तो नहीं काटता है, मेरे को ही काटा, है ना। भूत होते ना, भूत, भूत सुना आपने, भूत जो होते सड़क पे, किसके नहीं, यहां भूत है, लाखों गाड़ियां जाती हैं, किसी को नहीं पकड़ता, किसको पकड़ता है, जिसे हिसाब किताब उसको ही पकड़ता है, सबको तो नहीं पकड़ता, तो भूत के प्रति भी शुभ भावना शुभकामना होनी चाहिए, नहीं नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है हमारी स्थिति ऐसी, जब हमारा दिव्य ब्राह्मण जन्म याद होगा ना हमें, तो हमें सातों एनर्जी का बैलेंस तब होगा, व्यवहार बदलना चाहिए। बीमारियां क्यों आती है, व्यवहार से, गलत व्यवहार से आती है। किरणों से बीमारी ठीक होती है क्या, ज्ञान की किरणें आई, पवित्रता की किरणें, शांति की, नहीं, हमारा व्यवहार प्रैक्टिकल में बदलना चाहिए। हम योग तो करते हैं पर व्यवहार कैसा होता है, देखो सोचो जरा, योग किया, बाहर गए, बाहर फिर तो मैं शुरू हो गई, है ना, मुझे इससे बात नहीं करनी, क्यों नहीं करनी भाई, अभी तो हम प्रेम के सागर से समाये हुए थे, प्यार के सागर में, बाहर आके फिर प्यार के सागर कहां गया, नहीं कहां गया, शांति के सागर में समाये हुए, फिर हमने थोड़ा बोलना शुरू कर दिया, क्यों भाई, क्यों बोल रहे हो, शांति के सागर में समाये हुए, राइट। तो प्रैक्टिकल में जब हम ये करें ना, सातों एनर्जी का बैलेंस, तब हीलिंग एनर्जी बनेगी, हीलिंग में ना हमारा मन भी हील होएगा, हमारा शरीर भी हील होएगा, राइट, और क्या होगा, संबंध संपर्क भी हील हो जाएंगे। पर किसी में ज्ञान खाली बातें कर लेते हैं, पवित्रता नहीं है। पवित्रता में ना हर आत्मा को आत्मिक स्वरूप में देखना, उसके अनादि स्वरूप में देखना, आदि देवी देव बाबा ने बोली थी ना, ओरिजिनल स्वरूप में देखो ना, अभी वर्तमान के स्वरूप में मत देखो, कौन से स्वरूप में देखो, ओरिजिनल स्वरूप जो परम धाम से आत्मा कैसी आई थी उस स्वरूप को इमर्ज करके देखो, राइट। तो फिर किसी से प्रॉब्लम होगी क्या, फिर किसी से भी प्रॉब्लम नहीं, किसी ने कुछ भी किया हो, मैंने बड़ी दादी को देखता था और भी दादियों को देखता था, कुछ बात होती दादी के साथ, कोई बहन की कोई भाई की कुछ भी बात होती, थोड़ी देर में दादी वो बहन दोबारा आती, भाई दोबारा आता, दादी ऐसे मिलती जैसे कुछ बात हुई नहीं है, अभी वो गलत बोल के गई वो बहन या भाई गलत बोल के गया, और दादी आएगी दोबारा से, आओ मीठी बहन आ जाओ बैठो बैठो, जैसे कुछ हुआ ही भी नहीं है, पानी पे लीक आई खत्म हो गई। तो ऐसी स्थिति, ये व्यवहार होना चाहिए ना, तो इसको बोलते बैलेंस। इसे बड़ी दादी को देखता, बड़ी दादी के अंदर हीलिंग एनर्जी थी, हीलिंग एनर्जी माना दादी किसी को, जैसे हॉस्पिटल में दादी मुझे पूछती थी 95 में मैं आया ना जो, तो दादी उसको पूछती आज गुप्ता जी कोई बीमार है क्या, ऐसा कोई अपने बाबा के घर का बच्चा या कोई बाहर का, हाँ दादी फलां बीमार है ऐसे से, आबू रोड के बड़े वो हैं बिजनेसमैन है, वो बीमार है कई दिन से बेहोश है वेंटिलेटर पे है, आज दादी आएगी नाश्ता करके आएगी। तो दादी आती, दादी उसको 20 दिन से बेहोश है, वो दादी ने आके हाथ पे बाबू जी कैसे हो, वो बेहोश है ना, वो 20 दिन से होश में, हमने बोल दिया मरीज मरने वाला है, रिश्तेदार को बता दिया मरने वाला है, दादी आई यूं हाथ किया बाबू जी कैसे हो, और देखो तो 11 बजे उसको होश आनी शुरू हो जाती है ना, ये हीलिंग एनर्जी राइट। भाषण नहीं, क्या भाषणा, रियल व्यवहार की भाषणा, प्रैक्टिकल व्यवहार बदले तो हीलिंग एनर्जी होती है ना। और मरीज होश में आ गया, अगले दिन उसका वेंटिलेटर निकल गया 20 दिन से, और हमने अनाउंस किया था कि वो मरेगा नहीं, वो तो मरने वाला, सब रिश्तेदार आ गए सबके सब, और वो होश में आ गया ठीक हो गया, उसके बाद कितने साल जिंदा रहा। और वो आदमी माउंट आबू का ही था, और उसने बहुत केस किए हुए थे ब्रह्मा कुमारी पे, बहुत केस किए हुए थे, 7-8 केस किए हुए थे ब्रह्मा कुमारी के ऊपर, एंटी था पूरा, और फिर उसने सारे केस भी वापस करा लिए और ठीक होने के बाद, और खूब जहां भी जाके इतनी महिमा की ब्रह्मा कुमारी की ठीक होने के बाद, बात नहीं पूछा, और रोज मुरली सुने फिर शांति मन में अपने युगल के साथ आता ओम शांति भवन में। तो ये है हीलिंग एनर्जी राइट। फिर इससे ज्वालामुखी योग नहीं जागृत होती, तो कौन बैठा, दिल में मेरे बैठा हुआ है, अगर ये सदा दिव्य ब्राह्मण जन्म याद रहे तो उसकी आज्ञा क्या है, श्रीमत क्या है, पवित्र भव योगी भव। तो अगर दिल में बाबा है तो सच्ची दिल रहे, और बाबा की श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत परमत नहीं ना, तो हमारी साफ दिल है, जैसे हम कई बार ना ये मुद्रा लगा के बैठते ना ऐसे करके, ये क्या है, श्रीमत है क्या, मनमत है या परमत है, प्राणायाम करता है श्रीमत है मनमत है परमत है, परमत है ना। तो हम बाबा ने जो कहा फॉलो फादर है ना, तो अगर बाबा सच्चे दिल साफ दिल है तो दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का तंत्र खुलता है, तब बाबा की मुरली समझ में आने लगती है, बुद्धि में समझ आती है, और मन के द्वारा परिवर्तन होता है, मनमना भव है विकर्म विनाश करने का साधन, मन के द्वारा यह पवित्रता शांति सच्चा स्नेह अतिंद्रिय सुख आनंद और शक्तियों की अनुभूति कर अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं, बुद्धि के द्वारा अनुभूति की अथॉरिटी, बुद्धि समझ आती है, बुद्धि में समझ आती है। तो ज्ञान की समझ कब आती है, जब तीसरा नेत्र खुल जाए तब मुरली समझ में आती है, तब पवित्रता समझ में आती है कि मुरली की गहराई क्या है, ए क्या है, ए माना आत्मा, कि आत्मा कैसे शरीर को 7 एनर्जी से मन के माध्यम से शरीर को नरिश कर रही है, और मन में बॉडी भी कब वही एनर्जी जाएगी, जब शुद्ध सात्विक भोजन होगा, हमारी सैर रोज होगी, नींद अच्छी होगी, और कितना मर्जी योग कर लो मन नेगेटिव है, विचार भावनाएं नेगेटिव है, और चलो विचार भावनाएं भी मुरली से हमने पॉजिटिव कर ली, क्योंकि हमारा भोजन रासिक है, पराठा पकौड़ा समोसा खाते हो, तामसिक भोजन खाते हो, सैर नहीं करते हो, नींद अच्छी नहीं करते हो, समय पर नहीं करते हो, तो आपकी बॉडी पर उस योग का कोई असर नहीं होगा, समझ आई ना, नहीं तो पहले समझ नहीं आती थी, तीसरा नेत्र खुला तो समझ आई ना, दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान खुला, पर बाबा कौन है, बाबा सातों एनर्जी का पावर हाउस है, और कौन है बाबा, समझ आई हमें बाबा, और बाबा को मुरली सुना करके हमारे टीम को पॉजिटिव बनाता है, मन को पॉजिटिव बनाता है, संकल्प भावना वृत्ति और स्मृति, टीम कहते हैं मन को, टीम कहते हैं थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स और मेमोरीज, और फिर बाबा हमें शिक्षा और सावधानी देता है, बच्चे कैसे तन को भी पवित्र रखना है, कैसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, कैसे ब्रह्मचारी बनना है, कैसे सत्संग में रहना है, कैसे भोजन करना, कैसे शुद्ध सात्विक होना चाहिए, खाना भी कैसे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, बीड़ी सिगरेट ये सब नहीं करना चाहिए, ये देवता ऐसा भोजन नहीं करते, वैष्णव भोजन सात्विक भोजन होना चाहिए ना, प्रॉपर सैर करनी चाहिए, प्रॉपर नींद कर, तो बाबा हमें सावधानी देता है राइट, बाप के रूप में। फिर सत कनेक्शन का मिलेगा, कनेक्शन का मिलेगा, बाबा से करंट कब खींच सकते हैं, बाबा से करंट खींचने के लिए क्या चाहिए बोलो, बाबा ने कहा पहले सत्य की समझ की गहराई, ज्ञान की गहराई चाहिए, फिर धैर्यता चाहिए, पेशेंस चाहिए। एकदम पेड़ बड़ा होता है क्या, बीज हमने बोया फिर देख निकाल निकाल के देख रहे हैं उगा नहीं उगा, उगा नहीं उगा, पेशेंस चाहिए नहीं चाहिए, तो धैर्यता चाहिए, फिर गंभीरता सीरियस होकर करना पड़ेगा, और फिर सहनशीलता व्यवहार में चाहिए, तब करंट आएगी राइट। और जब करंट आएगी तो क्या होगा, ड्रामा, तब ड्रामा समझ में आएगा कि हाँ ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, सहन करके संभाल लेना। जब ऐसा आएगा ना तो फिर हम सत्य अपने आत्मा समझ के बाबा से कंबाइंड रहेंगे ना, ड्रामा को फुल स्टॉप लगा के, तो करंट आएगी और हम क्या होगा, विक्रम विनाश होने शुरू होंगे, तब पवित्रता आएगी, तब हम मुझे रियलाइज होगा मैं परम धाम में रहने वाली आत्मा हूं, मुझे वहां जाना है, सत्युग में आना है, बाबा के साथ जाना, बाबा के साथ आना, तो समाज पवित्रता इमर्ज हो जाएगी, पवित्रता गहराई समझ में आएगी, पवित्रता आएगी। तो पहला स्टेप है ब्रह्मचारी, अनादि ज्योति बिंदु सुरपादी देवी देवता स्वरूप में स्थित होके दूसरे का भी अनादि स्वरूप और अपना आदि देवी देवता स्वरूप मच करके व्यवहार करना, पहला स्टेप है अपना, दूसरा स्टेप दूसरे का भी मच करके व्यवहार करना, तीसरा लगाव झुकाव प्रभाव टकराव से भी मुक्त होना, फिर क्या क्यों कैसे से भी मुक्त होना, वैध संकल्प करना भी अपवित्रता है, चौथा काम विकार के साथ क्रोध लोम अहंकार से मुक्त होना, पांचवा स्टेप कौन सा है पवित्रता का, अहिंसा सॉरी आलस्य अलबेलापन भी अपवित्रता है, किसी के अवगुण देखना भी अपवित्रता है, बदलने की भावना भी अपवित्रता है, चिंता भी है, चिंता करना बाप के बच्चे बन के अभी भी चिंता कर रहे हो तो अपवित्रता है कि पवित्रता है, डरना भी अपवित्रता है राइट, जल्दबाजी करना भी अपवित्रता है, ईर्षा द्वेष करना भी अपवित्रता है, तो छठा स्टेप हो गया ना। सातवां स्टेप जो है वो है ब्रह्मचारी वाला, अगर हमारे अंदर ये सब नहीं होगा तब ब्रह्मचारी बनेंगे, तब संपूर्ण पवित्रता सत्संग और क्या होगा शुद्ध सात्विक भोजन, आंखों का भोजन भी शुद्ध सात्विक, कानों का भोजन भी क्या शुद्ध सात्विक, मुख का भोजन भी शुद्ध सात्विक, और श्वास भी शुद्ध सात्विक, खाली मुख का भोजन नहीं, तब हमारा तब ऐसी पवित्रता होगी ना, तो तब क्या होगा, जितनी अधिक पवित्रता होगी तभी शांति आएगी, तभी पास को फुलस्टॉप लगेगा और अपने सत्य में टिके परम सत्य बाप से कमांडो के 40 विचार क्या बन जाएंगे, चार बन जाएंगे, ABCD खाली रह जाएगा। जब ऐसी शांति आएगी तो सबके प्रति क्या जाएगा, क्योंकि हम बाबा से कंबाइंड होकर कर्म करते हैं, हम देखें बाबा बाबा तो सबके सबके साथ सबको पालना कर रहा है, बाबा कोई पार्शियलिटी नहीं करता है। अभी नीट का एग्जाम होगा ना जैसे, तो बीके के बच्चे होंगे, नॉन बीके के बच्चे भी होंगे, कौन पास होगा, जो बच्चा पढ़ेगा पास होगा ना, या जो बीके का बच्चा होगा पढ़ेगा नहीं वो भी पास हो जाएगा, फर्स्ट आ सकता है क्या, बीके का बच्चा नहीं पढ़े तो आ सकता है, नॉन बीके का बच्चा पढ़े तो भी फेल हो जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं पार्शियलिटी नहीं है, बाबा सबको बराबर, कोई पार्शियलिटी करता है क्या, ये बीके का बच्चा है नॉन बीके का बच्चा है, नहीं, यही प्यार है, प्यार का सागर है वो, तो हमें फिर तो बाबा सबकी पालना करता है, हम पार्शियलिटी कर लेते हैं, ये बीके है नॉन बीके है, ये ऐसा है ये ऐसा है, ये पैसे वाला है कम पैसे वाला है, बाबा करता है क्या, बाबा तो गरीब निवाज है ना, बाबा बच्चों की, बाबा ने क्या क्या कहा भाई, गरीब का एक रुपया और साहूकार का 10,000 रुपया बराबर है ना, उसकी एक पाई बराबर है ना राइट, तो बाबा क्या देखता है, परसेंटेज, कितनी परसेंटेज है उसके उसके उसकी पूरे प्रॉपर्टी में से कितने परसेंटेज है, नहीं मुझे याद है बड़ी दादी होती थी ना, कोई माता आके अपनी अंगूठी और गहना कोई नहीं है, एक अंगूठी है सिर्फ उसके पास, अंगूठी निकाल के दादी को देती, दादी ये लगा देना यज्ञ में, दादी कितने प्यार से उसको लेती थी है ना, सबको दिखाती, देखो माता मुझे अंगूठी दिखी गई है ना, अपनी कवित उसमें साड़ी होती है उसमें बांध लेती थी है ना, गांठ मार देती, कितना दादी को रहता था है ना, कोई चीज होती थी तो कोई अपना मंगलसूत्र भी, दादी कहते मंगलसूत्र नहीं देना तुमको है ना, क्योंकि फिर तुम्हारे घर वाले क्या करेंगे, फिर दादी मना करती थी उसको देने से, माता है तो इतनी भावना से नहीं, दादी मेरे को नहीं चाहिए ये सब, बस बाबा के घर में मेरा एक कना दाना लग जाए, तो इतनी शांति पास को फुल स्टॉप लग जाता है, इतनी शांति का प्यार। जब ऐसा प्यार होता है दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव होती है। बिना दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हुए हम सुख अतिंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तो समझ में आई, पवित्र ज्ञान समझ में आया, पवित्रता समझ में आई, शांति समझ में आई और सच्चा स्नेह समझ में आया, बुद्धि में समझ आती है। इसको बोलते हैं बुद्धि की लाइन क्लियर हो गई, राइट? क्या बोलते हैं? बुद्धि की लाइन क्लीन हो, समझ में आना है, क्लीन और क्लियर होना है, राइट? जब क्लीन और क्लियर हुआ तो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव हो गई और मेरा सूक्ष्म शरीर भी नीचे दबरा। सूक्ष्म शरीर क्या? मन सूक्ष्म शरीर है। मेरे विचार शुद्ध होते जा रहे हैं, भावना शुद्ध होती जा रही है, मेरी वृत्ति आत्मिक रूहानी बनती जा रही है और स्मृति भी पॉजिटिव जागृत होती जा रही है। तो मन रूपी सूक्ष्म शरीर एक्टिव होता जा रहा है। संस्कार माना ये नियम और मर्यादाएं, चार नियम चार मर्यादाएं ब्राह्मणों की होती है ना, वो मेरी ड्रेस बनती जा रही है। तो सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा, मतलब हम आत्मा सूक्ष्मता में कब जा सकते हैं? जब तक दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव ना हो। और दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट कब एक्टिव होगी? जब सारे विश्व में हर आत्मा को दिल से उसके हर रूल के साथ बिना किसी शर्त के स्वीकार करेंगे और उसकी बराबर पालना करेंगे। किसी एक व्यक्ति के प्रति भी आपका छोटा सा दुश्मनी का भाव ना हो, किसने कुछ भी किया हो, तब आप सूक्ष्म वतन बाप दादा को जा सकते हो, तब बाबा से मिलन मना सकते हो। इसी को बोलते हैं अतिंद्रिय सुख। तब उनके सूक्ष्म वतन के साथ बाप दादा की गोद में सूक्ष्म वतन, बाबा कहता आओ बच्चा मेरी गोद में समा जाओ। ऐसे विजुलाइज करने की बातें, आंखें लेके नहीं जाते हैं, ये वाली आंख तो नहीं जाती ना, किले ले जाते हैं, वहां दिखते कुछ भी नहीं है, हम ऐसा महसूस करते हैं। जैसे आम खाते तो आम को दिखाई देता है आम का टेस्ट, गुलाब के फूल खुशबू दिखाई देती है क्या? खुशबू महसूस होती है ना। ऐसे ही हमें बाबा के साथ की वो अतिंद्रिय सुख, इंद्रिय से ऊपर का सुख, मिलने का सुख महसूस होता है। बाबा कहते आ जाओ बच्चे आ जाओ, ऐसे को बाहर नजर नहीं आती है, पर ऐसा फील होता है कि कोई हमको बुला रहा है, वो रूहानी शक्ति हमको कशिश कर रही है, राइट? बाबा भी दिखाई नहीं देता है, कई लोग बाबा को इमेजिन करके बना लेते हैं, है ना, बाबा बैठा है और उसमें शिव बाबा बैठा है, और वो गलत है, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि बाबा देखने की चीज नहीं है, शिव बाबा देखने की चीज है क्या? ब्रह्मा बाबा भी देखने की चीज नहीं है, है क्या देखने की चीज? फिर हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं। रियल को रियलाइज किया जाता है, महसूस किया जाता है, तो रियल में करके देखो। जब दिल में बाबा है ना, जो दिल में होता है उसकी याद अपने आप आती है। ये दिल नहीं, इसमें तो खून भरा हुआ है, चारों चैम्बर में खून भरा हुआ है, इसमें कोई आ जाए तो क्या होगा? 70 बार धड़केगा तो हार्ट क्या होगा? 70 बार बाहर जाएगा, 70 बार अंदर आएगा और खून में नहा रहेगा ना। तो इसमें कोई रहता नहीं है। शिव बाबा इसमें रहता है क्या? कोई आदमी इसमें रहेगा तो कितना परेशान हो जाएगा, गुस्सा आ गया तो 100 बार अंदर बाहर होना पड़ेगा ना, वो भी 100 बार करेगा तो वो भी अंदर। दिल यहाँ है, दिल एक मंदिर है, ये मंदिर है ना, इसमें बाबा है। तो दिल में जिसके बाबा है, दिल में जो होता है उसकी याद हमेशा अपने आप आती रहेगी, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, राइट? तो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति का तब ये, इसको बोलते हैं अतिंद्रिय सुख की अनुभूति। हम बाबा की गोद में चले गए सूक्ष्म शरीर के साथ, मन शुद्ध शुद्ध, टीम हमारी पॉजिटिव है, संस्कार हमारे बन गए पवित्रता के, शुद्ध सात्विक भोजन के, सत्संग के और दैवी गुणों की धारणा के, अमृत वेला रोज करते हैं, मुरली हमारी पक्की है, रोज मिस नहीं करते हैं, साधन मुरली को ही रिलाइज करते हैं। बस हमारे दिल में क्या रहता है, हमारी जेब में क्या रहता है? बाबा की मुरली है ना, ये प्रेम पत्र रहता है ना। तो प्रेम पत्र कहाँ रखते हैं? दिल के पास। पढ़ते कैसे हैं? कैसे पढ़ते हैं? कोई देखते हैं आसपास में, छुपाते हैं, छुपा के फिर एक लाइन पढ़ते हैं, कोई आता तुरंत छुपा लेते हैं, नहीं फिर मौका देखते हैं जल्दी जावे ना तो फिर एक लाइन और पढ़ेंगे ना, नहीं प्रेम पत्र ऐसे तो पढ़ते हैं। तो ऐसा प्यार है ना, नहीं अंदर का प्यार, दिखा के नहीं करते हैं, छुपा के करते हैं ना। प्यार कैसे होता है? दिखाने की चीज है क्या? है ना, ऐसा प्यार बस बाबा के साथ। तो बाबा कहता ऐसा प्यार लग जाए ना बच्चे के बाबा का, तो बाबा बहुत प्यार करता है। प्यार माना फिर माँ के संबंध का हमें पता लग गया, बाप का पता लग गया दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि, और फिर टीचर का बाबा के गोद में चले गए, अब स्वदृष्टि को घुमा रहे हैं, पांचों स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। फिर पिता के सतगुरु के रूप में हम क्या करते हैं? टीचर के रूप में सुदर्शन विशाल बुद्धि बन जाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान मिल जाता है। और सतगुरु के रूप में बाबा कहता है साकारी आकारी निराकारी, सकारी थे कर्मयोगी फिर बाबा की गोद में गए, अकारी फिर परमधाम में चले गए, अश्री बन के परमधाम में चले गए और वहां से सुखधाम भी जा सकते हैं। फिर बंदोकर्म में, जैसे बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, बंदोकर्म में सारा बोझ, बाबा कहते हैं सतगुरु कर्म में ड्रिल कर ली ना हल्के, अभी हल्के हो गए, अभी सारा बोझ दे दो मेरे को, तुम ड्रिल करो आराम से, सारा बोझ उठा के साइड में दे दो मुझे। फिर कहता बाबा क्या बोलता है, बाबा कहते बच्चे अब तुम हल्के हो गए, मेरे को अंदर कचरा भर गया ना, पसीना आया ना, तो सारा बाहर निकाल दो उसको, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, बाबा को बता, रोज बता दो, लेटर लिख दो। और फिर साजन बन जाता है, साजन बना दैवी गुण सजा दिया 36 गुणों से, और फिर सज्जन बन गया, रिटर्न जर्नी पे सारे विक्रम विनाश करा दिए, है ना, 16 कला संपूर्ण बना दिया और फिर बच्चा बन गया। तो ऐसा जब आठों संबंध की अनुभूति के, इसमें बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां होती हैं, बाबा से बाबा साथ है ना, दिल में बाबा साथ है और हाथ कहाँ है, श्रीमत रूपी हाथ, हाथ में हाथ है, तो बाबा से बहुत सुंदर अनुभूतियां होती हैं भिन्न भिन्न संबंधों की, माता पिता दिव्य ब्राह्मण जन्म, कितनी खुशी अनुभव कराता है, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा मुझे दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, बाबा मेरे दिल में बैठा हुआ है, इसको महसूस करते रहो, ज्ञान का सागर, पवित्रता, शांति का, ज्ञान का अनुभव करो, झूले का, पवित्रता का झूला है, ड्रामा का भी झूला है, पवित्रता का भी झूला है, सात प्रकार के पवित्रता, सात प्रकार की पवित्रता है ना, सातों प्रकार की पवित्रता झूला, शांति का झूला, सच्चे स्नेह का झूला, अतिंद्रिय सुख, बाबा के साथ भिन्न भिन्न संबंधों के झूले, राइट। फिर बाबा से जब सरल संबंधों की अनुभूति हो गई, अब क्या हुआ, एक ही बाबा है, उसे सरल संबंध की अनुभूति, क्या हुआ, अब मुझे को संबंध चाहिए क्या, तो सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, अब बाबा में समा गए, आनंद, लवली स्थिति, गोइंग बियॉन्ड, अब आत्मा देह और देखे दुनिया से एकदम, जैसे देखो ऐसे कहते हैं ना, ये दुनिया चार तक की दुनिया है, चार संकल्पों के तक की दुनिया ये वाली है, ABCD ना, ड्रामा यहाँ है क्या, ऊपर भी है, सूक्ष्मतन में ड्रामा है क्या, नहीं है ना, तो डी को फुल स्टॉप लगा दिया तो हम कहाँ पहुंच गए, सूक्ष्मतन पहुंच गए। तो 3 से 2 की स्थिति क्या है, अतिंद्रिय सुख की स्थिति है, 3 से 2 संबंध, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सजन बच्चा, बच्चा फिर गोद में आ गए, बाबा के पास चले गए, तो दो में पहुंच गए, बाबा की गोद में, बच्चा तो गोद में आ गया ना, या हम बच्चे बन गए बिल्कुल, तो बाबा की गोद में। फिर 2 से 1 की स्थिति क्या है, अन्न की स्थिति, 2 अभी क्या, मैं आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो गई, नदी सागर में समा के क्या बन गई, सागर बन गई, तो वो स्थिति 2 से 1 की स्थिति क्या है, आनंद की स्थिति। ये स्थिति क्या करती है, सारे हार्मोन्स हमारे ठीक कर देती है, डायबिटीज ठीक हो जाती है, थायराइड की बीमारी भी कम होने लगती है, ठीक है, अतिंद्रिय सुख ठीक आ जाए तो क्या होगा, आपका पैनक्रियाज एक ठीक होने लगता है, क्या लीवर ठीक होने लगता है, लीवर ठीक होने लगता है, और क्या होता है, हाजमा अच्छा होने लगता है, गैस बननी बंद हो जाएगी, राइट, ये फायदे शुरू के, उसके दूसरे फायदे है ना, पेट में दर्द ठीक हो जाएगा, कब्जी नहीं होगी, शरीर भी ठीक होगी ना, अतिंद्रिय सुख के झूले है ना, तो झूले से ये भी फायदा होगा, नहीं होगा, ये ठीक, सब ठीक होगा। और सज्जन के रूप में क्या किया बाबा ने, सज्जन के रूप में क्या किया, सर्व गुणों से 36 गुणों से जा दिया, सज्जन के रूप में क्या किया, संपूर्ण क्या बना दिया, 16 कला संपूर्ण बना दिया, ये याद करने की बात है, संपूर्ण निर्विकारी बना दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमधर्म बना दिया, और बच्चा बन गया, फिर बच्चा तो गोदी का झूला हो गया, नहीं हो गया, गोदी में आ गया ना, गोदी वाला झूला, गोदी में तो झूली झूला होता है मां के, तो कितने झूले बना दिए ना, तो फिर आनंद का झूला आ गया, आनंद में क्या आ गया, लवली स्थिति। तो सारे हमारी बॉडी के 30,000 अरब कोशिका है ना, 30,000 बिलियन सेल्स हमारी बॉडी में, और 300 बिलियन सेल रोज नहीं बनती है, 100 दिन में नया आदमी बन जाता है, हार्ट की नसें ब्लॉक हैं तो 100 दिन में नई नसें बनेंगी, ब्लॉक हो गई नहीं, पर कब होगा, जब आनंद में रहोगे, तो 100 दिन आनंद में रह जाऊं क्या होगा, नई सेल्स बिना बीमारी वाली होंगी, कैंसर हो कैंसर भी खत्म, डायबिटीज हो डायबिटीज खत्म, हार्ट की सारी ब्लॉकेजेस खत्म, घुटने भी नए बन जाएंगे, घुटनों के दर्द खत्म, कमर के दर्द खत्म, सुना, आप बूढ़े नहीं, मतलब बूढ़े तो बूढ़े ही रहोगे, पर 60 साल के हो तो 40 साल के लगोगे, 80 के होगे तो 60 के बन जाओगे, 40 के होगे तो 20 साल जैसे लगोगे, 20 साल उम्र कम हो जाएगी आपकी, है ना, फायदा है कि नहीं है, तो भरपूर रहो ना आनंद, बस, या तो इसको बोलते हैं विदेही स्थिति भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विदेही स्थिति। जब आनंद की स्थिति आती है ना, तो वहां से क्या है, वो सुख ऊपर परमधाम है, परमधाम में क्या हो जाएगा, अशरीरी है, आनंद क्या है, एक बाबा है सर, लवलीन माना आत्मा परमात्मा के प्यार में खो गई है ना, तो लवलीन मतलब समानी गई, प्यार में लवलीन हो गई, विनाश नहीं हुई कि तो अलग तो है, पर अभी उसके आगे पॉइंट वन है, पॉइंट नाइन है। अब जैसे एक होगा ना, एक विचार एक तो चल रहा है, पर वहां पॉइंट नाइन ना कोई विचार नहीं चल रहा परम धाम में पहुंच गए। इसको बोलते हैं अशरीरी। अब अशरीरी बन के परम धाम में अपने आप बाबा कौन है, जीरो। अशरीरी बन के अशरीरी परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हो गए। आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ती है ना, अतिंद्र सुख भी अनुभव, ये एफर्ट नहीं करनी पड़ती मैं क्या करूं, अपने आप ही फील होता है। माँ के बाद बाप आएगा, बाप के बाद कौन आएगा, टीचर आएगा, टीचर के बाद सदगुरु आएगा, रिलेशनशिप है ना, सदगुरु के बाद भाई आएगा, फिर कौन आएगा, बंधु आएगा, फिर दोस्त, यार भाई आए के बाद कौन, दोस्त आएंगे, दोस्त के बाद शादी होगी ना, ठीक है, शादी शादी होगी तो क्या होगा, डॉक्टर आएगा ना, डॉक्टर आएगा तो बच्चा आएगा, नहीं नहीं है, नहीं है सीक्वेंस है कि नहीं है, माँ फिर बाप फिर कौन, टीचर फिर गुरु, गुरु जी करेंगे ना नामकरण संस्कार करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर क्या होगा, बंधु बड़ा भाई बड़ी बहन आएगी, फिर दोस्त आएंगे, फिर शादी होगी, शादी के बाद क्या होगा, सर्जन आएगा, फिर बच्चा होगा, तो नौ संबंध हो गए, नहीं हो गए। इस तरह से अपने आप को हर समय घुमा के रखो, भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहो तो क्या होगा, और फिर सर्व संबंधों के महिंसार वाली याद आनंद आ गया, तो अपना शरीर से आप विधेयी बन गए, क्या बन गए, अशरीरी बन गए, अशरीरी बन के प्रणधान और अशरीरी बाप से कंबाइंड हुए तो एकदम रिलैक्सेशन आ गई, क्या आ गई, एकदम देह से अलग हो गए ना, एकदम रिलैक्सेशन हो गई, और अपने अंदर इधर बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, ऐसे केमिकल निकलते हैं जैसे कोई एंडोर्फिन्स होते हैं, एनकैफेलिन्स होते हैं, सीरोटोनिन होता है ना, ये क्या करते हैं अंदर से बहुत एकदम पेन किलर, सारा पेन खत्म कर देते हैं, शरीर में कोई बीमारी भी, हार्ट में बीमारी हो कुछ भी, हम वहां पर हैं पर इधर हीलिंग हो रही होती है ना, दर्द खत्म हो जाता है। देह के कर्म भोग सूलिक से कांटे बन जाता है, कर्मों के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाता है, कर्मों के हिसाब किताब क्या फील ही नहीं होते, देह के कर्म संबंधों के हिसाब किताब नहीं होते, पदार्थों के भी हिसाब किताब होते हैं, बिजनेस में लॉस हो गया, कर संबंध में कोई मर गया तो बीमार हो गया, किसी टांग टूट गई, संबंध में क्या हुआ, दुख तो होता है ना, तो फिर दुख महसूस नहीं होता, कर्मों का हिसाब सेवा करते हैं पर दुख महसूस नहीं होता, तो अशरीर बन के परम अशरीर बनने से ही फायदा होता है। तो इनको देह के कर्म भोग और कर्मों के हिसाब तक को सहन करने की शक्ति आ जाती है, समाने की शक्ति आती है, सामना करने की सेवा करने की शक्ति आती है, तब हमारा चित्त शांत हो जाता है, चित्त शांत होता है तो चेतन मन में क्या होता है, फाइलें कौन सी खुलती, मुरली की फाइल खुलती, आज बाबा ने क्या बोला था, फिर मुरली की बातें अपने आप याद आती हैं, तो चित्त अगर शांत होता है ना, चंचल बेचैन होता है तो मुरली की बात याद नहीं आती है, दुनिया की बातें याद आती है, फिर बाबा की हाँ अतिंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं, ये नशा रहे हम मैं किसका बच्चा हूं, तो दिव्य ब्राह्मण जन्म की स्मृति मर्ज रहे ना, अगर बाप को बोले तो सुख गम हो जाए, सुख गुम हो जाएगा, बचपन के दिन भुलाना देना आज हसेकन, तो ये अंदर से स्मृति आएगी, आज गीत था तो क्या होगा, तो ये स्मृति आई ना तो ये बाबा की अभी मुरली का मैं ये संकल्प को जब बार बार करेंगे गहराई से तो भावना बन गया, मेरी भावना से वाइब्रेशन निकलते हैं बाबा तक पहुंच गए सूक्ष्म वतन में, बाबा जब कहता तुम मुझे याद करते मैं तुमको पदम गुणा याद करता हूं, तो बाबा के पास क्या है पवित्रता शांति सच्चा स्नेह, तो वो मेरे पास आता है वापस लौट के पदम गुणा, और मैं उसमें खो जाता हूं उसका मंथन करता हूं तो क्या होता है फिर मक्खन, ये तो था बुद्धि में अतिंद्र सुख, अभी क्या कौन सा सुख मन में अतिंद्र सुख की अनुभूति हो रही है, अतिंद्र सुख आनंद की मक्खन है, अतिंद्र सुख आनंद मक्खन है, जो जितना ज्ञान पवित्रता शांति सच्चा स्नेह ऊपर से जब आ रहा है उसके वाइब्रेशन बाबा से आपके पास आ रहे हैं, आप कैच कर रहे हो, कैच कौन करेगा, जिसका चित्त शांत होगा, एकाग्र आनंदमय होगा, इसे चित्त शांत, अगर शांत चित्त है तो क्या कैच ही नहीं कर सकते हो, आपके वाइब्रेशन बाबा तक जाएंगे नहीं, जब बाबा के वाइब्रेशन आप कैच करोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा वृत्त, जैसे पंखा घूमना शुरू हो जाता है ना, हवा आती है तो पंखा घूमता है ना, तो पंखा घूमना शुरू हो गया तो क्या हो गया, पंखे की पंखुड़ी दिखाई देनी बंद हो गई, तब आप क्या हो गए, देवान से न्यारे हो गए, ठंडी हवा आनी शुरू हो गई, अतिंद्र सुख आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो गई, और फिर अशरीरी हो गए, अशरीरी होके क्या हुआ कर्म भोग, फिर रियल चुक्तु कहां पर होते हैं, कर्म भोग चुक्तु मन पे हो, मन में होते हैं, बुद्धि में चुक्तु नहीं होते, राइट, बुद्धि में समझ आती है पर चुक्तु कहां होते हैं, मनमना भव से कर्म भोग चुक्तु होते हैं ना, तो जब हमारी वृत्ति में जब ऐसा, वृत्ति से क्या बनता है वायुमंडल बन जाता है, वायुमंडल दृष्टि बदल जाती है, दुख देने वाला व्यक्ति भी हमें क्या लगता है सुखदायी लगता है, मेरा हिसाब तब चुप्त हो रहा है, तंग करने वाला व्यक्ति भी हमको सुखदायी लगता है, और हमारा हवामंडल बड़ा हो जाता ना, सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी करता रहे, हमको फील नहीं होता है। तो कर्मों का हिसाब किताब और हिसाब किताब, कर्मों के हिसाब किताब क्या होते हैं, देखे कर्म भोग भी। डॉक्टर सुई लगा रहा है, यहां लगाया, मैं बड़ी दादी को देखता था, यहां लगाया नहीं लगी दादी, फिर यहां लगाया उसने नहीं लगी, यहां लगाया नहीं लगाई, दादी के दूसरे हाथ में लगा लो, दूसरे हाथ कर दी, ये होता सहयोग करने की शक्ति। नहीं तो दूसरे लोग क्या बोलते, बस और नहीं लगाना, ये सहयोग करने की शक्ति। डर तो होता सुई में, नहीं होता, दादी क्या करे, देह के भान से परे है, रतन में दादी भी ऐसे ही करती थी, एकदम मुस्कुरा रही है, 102 का बुखार रखा है, अशरीर स्थिति है, बस मुस्कुरा रही है, बस दादी कैसे हो, 102 बुखार में, ठीक हूं डॉक्टर, ठीक हूं, पहले तब से 3 साल से बोलना, पहले बोलती थी ना थोड़ा थोड़ा, निमोनिया हो गया फेफड़े में, बाएं फेफड़े में उनको बार बार निमोनिया होता था, सांस नहीं आ रहा है, कैसे हो दादी, सांस नहीं आ तो भी ऐसे ऐसे करे, पर मुस्कुरा रही है। तो ये है रियल विधेय, अतिंद्रिय सुख आनंद की स्थिति है। तो कर्म वो क्या हो गया, सूली से कांटा हो गया, राइट, आनंद की स्थिति, दूसरे भी खुश हैं, कोई दुखी नहीं हो रहा है, वो दूसरे दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो दादी तो मुस्कुरा रही है, बड़ी दादी भी ऐसी थी, गले में ट्यूब पड़ी हुई है, इधर गले में और नालियां पड़ी हुई हैं, दादी मुस्कुरा रही है, दिन में बैठा हूं दादी के पास, दादी अति आनंद में है, बस दादी कहां पर हो, इशारा करेंगे उंगली से ऊपर, बाबा के पास हो। तो ये अशरीर, तो अशरीर बनके हमारा क्या होता है, चित्त, और फर्दर फिर उससे बाद में अशरीर निराकारी में एक फर्क है, निराकारी से कहते हैं मैंपन मेरेपन का भी भान ना हो, तपस्या, तपस्या मान, तपस्या और योग में, तपस्या में क्या फर्क है, योग में अशरीरी बने, अशरीरी बने, योग से अशरीरी बने, किंतु फिर भी मैंपन मेरापन थोड़ा रहता है, जब अशरीरी बन के जब कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है, तो जैसे इंजेक्शन लगाया, बेहोश कर दिया, अशरीर स्थिति क्या है, एनेस्थीसिया है, अशरीर स्थिति क्या है, बेहोश करना, और निराकारी स्थिति क्या है, ऑपरेशन है, ऑपरेशन समझते हैं, जड़ क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो ऑपरेशन कब होता है, निराकारी स्थिति में, जहां पर मैंपन मेरापन की आग वाली जीवन है ना, उसे कहते हैं तपस्या, उससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं, राइट, उससे हमारे विक्रम, उसको फिर कर्म भोग के जो ये विकारों के वेग होते हैं, वेलोसिटी, बहुत इंपल्स आते हैं जोर से, क्रोध की बहुत तेजी आती है ना, लोभ की भी तेजी आती है, मोह की भी, काम विकार की भी तेजी आती है, वो तेजी को सहन करके संभाल लेते हैं, सामना करके सहयोग कर देते हैं, कुछ भी बात हो, दादी हमने दादियों में देखा है कि ऐसा देखा है कि निर्मल शांता दादी आज की मुंडी में था ना, ऐसे बस मुस्कुरा रही है, एकदम ऐसी स्थिति में है, पेट में खाना नहीं खाना, पेट में ट्यूब डाल रखी है, वहां से खिलाते हैं थोड़ा, और बस मुस्कुरा रही, लेटी हुई बिस्तर में मुस्कुरा रही, जैसे विष्णु है ना, विष्णु दिखाते ना शेषैया पे लेटा हुआ, ऐसे मुस्कुरा रही होती, शरीर बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, वो मुस्कुरा रही, कमरे में कोई साइन नहीं है बीमारी का, कोई दुख का साइन नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं, वायुमंडल सुख शांति का है, वो तो बीमार निर्मल शांता बीमार नहीं दिखती थी, उनकी उनकी सेवाधारी बीमार दिखते थे ना, तो दादी है ना बीमार नहीं दिखती, सेवाधारी बीमार दिखते थे ना, हाँ जी, तो बाबा जो है, मतलब बाबा जो है ऐसी स्थिति, इसको बोलते हैं अतिंद्रिय सुख आनंद की स्थिति, राइट, हमेशा मुस्कुराते रहना, भरपूर अवस्था, पर पवित्रता याद रहे, पहले दिव्य ब्राह्मण जन्म याद रहे, आज बाबा ने मुझे याद रहेगा ना, पहली लाइन में क्या लिखा, अतिंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं, नया दिव्य ब्राह्मण जन्म याद है तो अतिंद्रिय सुख अनुभव होगा, एक ही लाइन में बाबा ने सब बता दिया, तो बाबा के बच्चे हैं तो पवित्रता भी आ गई, पवित्रता का सागर दिल में मेरे कौन है, पवित्रता आ गई, शांति भी आ गई, सच्चा स्नेह भी आ गया, दिव्य बुद्धि रूप लिफ्ट एक्टिव हो गए, अत्यंत सुख में आ गए, आनंद में आ गए, उसके ऊपर गए तो भी अशरीर बन गए, बेहोश हो गए, मतलब और फिर ऑपरेशन हो गया, नीचे आ जाओ, फिर विक्रम विनाश होते होते मास्टर बीज बन जाएंगे, मास्टर बीज बन के सारे क्लब को सकाश दे देंगे, तो हमारी राजाई मिल जाएगी, बिना सकाश दे राजाई मिलेगी नहीं, राइट, ओके, ओम, हाँ जी। हाँ ये बताता हूँ मैं, एक इसमें लास्ट में टाइम तो पूरा हो गया, मैं बताता हूँ। देखो मेरे को जब हार्ट की बीमारी हुई थी ना मेरे को 96 में, तो बाबा ने क्या किया, मेरे को ऑपरेशन के लिए बताया था अमेरिका जाके ऑपरेशन करने के लिए। तो दादी को मैंने कहा, बड़ी दादी को, दादी मेरा ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया है, अमेरिका वाले डॉक्टर ने, अमेरिका। उसने कोई बात नहीं, मैं मोहिनी दीदी को, मोहिनी बहन को बोल देती हूँ, अमेरिका चले जाएंगे और ऑपरेशन करा के आ जाओ। मैंने, दादी मैं तो आया था यहाँ पर लोगों को ऑपरेशन से बचाने के लिए, तो मेरा तो खुद ही ऑपरेशन की बात कर रहे हो। तो गुलजारदा जी साथ में बैठी थी, तो दादी ने गुलजारदा को कहा, गुल आप बाबा से पूछना डॉक्टर को ऑपरेशन कराना है क्या, क्या करना है, ये बीमारी क्यों आई है। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मैं रात को सो नहीं पाता था, दर्द होता था, बाजू सारी सुन रहती थी, धड़कन इरेगुलर होती थी। तो बाबा ने अगले दिन मैसेज दिया कि बच्चे को ये बीमारी आई है राजयोग के अनुभव की अथॉरिटी बनाने के लिए, राजयोग के अनुभव के, बच्चे को रिसर्च करनी है राजयोग की, इसको राजयोग का अनुभव की अथॉरिटी तो है नहीं, तो इसको तो राजयोग आता भी नहीं ढंग से। तो बाबा ने कहा इसके, इसका उसको बच्चे को, बाबा ने कहा बच्चे को बोलना एक महीने की छुट्टी देवे हॉस्पिटल से और घर में बैठ कर खूब योग करे और घंटे घंटे याद का चार्ट बनाए। तो मैंने शुरू किया, तो मैं चार घंटे कमेंट्री लगा देता था और बैठ के योग करता था। मैं सूक्ष्म वतन में जा रहा हूँ, सूर्य चांद तारों के बीच में से सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के पास गया, बाबा ने प्यार दिया, बाबा ने ऐसे ऐसे किया, हार्ट पे ऐसे ऐसे किया, ऐसे करा के आ गया और फिर ऊपर ही बैठा रहता था, सूक्ष्म वतन में बैठा रहता था। तो मैंने एक घंटा, फिर चार घंटा, छः घंटा, आठ घंटा, एक दिन 10.5 घंटा बनाया चार्ट बाबा के पास रहा जैसे, तो है ना। तो मैं एक महीने के बाद, जब एक महीना पूरा हुआ ना, तो फिर चार्ट लेके दादी के पास गया, दादी मैंने देखो अभी चार्ट लेके गया और ये दाद बाबा तो ये देखो मैंने दादी, पर मुझे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी धड़कन इरेगुलर होती है, छाती में दर्द होता रहता है, बाजू सुन रहती है और मैं सो नहीं सकता हूँ। तो दादी ने देखो, दादी को चार्ट दिखाया, देखो इसका चार्ट देखो घंटे घंटे कितना कितना एक्यूरेट लिखा हुआ। तो दादी बाबा के पास अगले दिन गई ना मैसेज देके, तो बाबा ने पता क्या बोला, बाबा दादी दादी कहती, बाबा कहता है बच्चा कहता है मैं तो बाबा 10-10 घंटे मैंने बाबा को याद किया, 8 घंटा याद किया, बाबा तो पूरे महीने में एक बार भी मेरे पास नहीं आया, बच्चा तो मेरे पास एक महीने एक बार भी नहीं आया, सुना, एक बार भी नहीं आया, मैं तो 10-10 घंटे ऊपर रहा। तो बाबा ने कहा, बाबा ने कभी नहीं कहा विजुलाइज करो, इमेजिन करो, इससे पहले दिल में बाबा को इमर्ज करो, दिव्य ब्राह्मण जन को इमर्ज करो, अंतर्मुखी बनो, अव्यक्त बनो, अलौकिक बनो और अपना सारा चिट्ठी बचपन से लेकर सारा जो गंदगी निकालो, लिख लिख के निकालो, 10-10 बार लिखता था मैं। फिर बाबा ने कहा बच्चे इसको रिवाइज और रियलाइज करो, दिल में सच्चाई, दिल में बुद्धि के रूप में बुद्धि को क्लीन क्लियर बनाओ, समझो ज्ञान की गहराई क्या है, पवित्रता गहराई क्या है। एक एक मुरली 97 तक की मुरली लिख के गए, 96 तक मुरली छिप गई थी ना, तो मैंने फिर एक एक मुरली को पढ़ता, 6-6 घंटे लगते पढ़ने, एक एक लाइन को रिवाइज और रियलाइज करता था और मैं गहराई से किया और तीसरे दिन ही मेरा दर्द ठीक हो गया, 4 महीने से मैं सोया नहीं था। उसमें रियल में कोई सूक्ष्म होता है, ऐसे रियलाइज नहीं करना है, रियल में सूक्ष्म रियलाइज सच्चे दिल से महसूस होता है, अंदर से समझ भी आती है, दिव्य बुद्धि रूप लिफ्ट एक्टिव होती है और बाबा की गोद का अनुभव करते हैं। सचमुच में ऐसा इतनी अत्यंत सुख आनंद की अनुभूति होती है, अश्री बन के परम धाम अश्री बाप से कंबाइंड होते हैं, निराकारी स्थिति में तपस्या होती है, चलते फिरते उठते बैठते तपस्या होती है, दिल में बाबा है हमेशा ही बाबा की याद बनी रहे, भुलाना मुश्किल है जो दिल में है, और विजुलाइज करने से हेडेक हो जाती है, विजुलाइज करते रहो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है ना, तो टेंशन हो जाती है, राइट। इसलिए विजुलाइज नहीं करो, क्या करो, इसलिए बाबा ने कहा अंतिम रियलाइजेशन कोर्स, बाबा जो है महसूस नहीं, बाबा महसूस होता है, आप मन बुद्धि से वहां जाते हो रियल में फील होता है, इतना हल्कापन महसूस होता है जैसे हम बाबा से हमारे संकल्पों से बातचीत भी हो रही होती है, दिखता नहीं है बाबा, महसूस होता है, राइट। ये जो हम अपना बनाते हैं ना, फिर बाबा ने एक बात और कही, बच्चे आधा कल्प तो द्वापर के शुरू में हीरे की मूर्ति बनाई शिव बाबा की, फिर किसकी बनाई, सोने की बनाई, फिर चांदी की बनाई, फिर अष्ट धातु की बनाई, फिर किसकी बनाई, फिर बच्चों ने पत्थर की बनाई और अभी तो मट्टी की बनाते हैं, और अभी बच्चे ब्राह्मण बच्चे क्या करते हैं, वो अपनी इमेजिनेशन से मूर्ति बनाते हैं शिव बाबा की, है ना, सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाप बना लेते हैं, है ना, बाप दादा बना लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बाबा ने ये बात और कही थी, बच्चे पासपोर्ट दिया था बच्चे ने ऊपर जाने का, पासपोर्ट है सच्ची दिल साफ दिल, राइट, और पवित्रता है वीजा, उसके वीजा की ग्रेड होती है, प्राइम मिनिस्टर का वीजा कैसा होता है? ब्रह्मचारी वाला, ठीक है ना। सच्चे बच्चे का गोद में जाने के लिए ब्रह्मचारी वाला वीजा चाहिए, सात लेवल है ना। एक इकोनॉमिक क्लास वाला वीजा होता है, एक ब्यूरोक्रेट का वीजा होता है, एक स्टेट गेस्ट का वीजा होता है, मिनिस्टरों का वीजा अलग होता है, पास जो होते ना जो डिप्लोमेट होते ना क्या बोलते हैं एम्बेसडर का वीजा अलग होता है, राजदूत का वीजा अलग होता है। तो वीजा अलग अलग लेवल का होता है। उतनी पवित्रता होगी ना उतना क्या होगा। और शांति और प्यार, शांति है टिकट इकोनॉमिक क्लास की टिकट। बाबा ने ये नहीं कहा था, बाबा ने शांति और प्यार विश्व में हर आत्मा को जब स्वीकार कर लेंगे ना तो बाबा की गोद ये टिकट है। ऐसा बच्चा दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट से बाबा की गोद का अनुभव कर सकता है, चलते फिरते उठते खाते हर जगह अनुभव कर सकता है। नहीं कि कोई विशेष जगह पे बैठ के या लाल लाइट जला के ही बैठे तभी नहीं, व्हाइट लाइट में भी हर जगह कर सकता है, खाना खाते खाते भी कर सकता है, सोते सोते भी कर सकता है। उसकी निद्रा नहीं है, योग निद्रा है उसकी, सोते हुए योग निद्रा है। दादी जान के कहते हैं मेरी योग निद्रा है, सोते सोते चली जाऊं तो बाबा की याद में हूं, राइट। उसकी श्वासोश्वास याद है, सही विधि से याद है तो ये विधि है बाबा ने बताई जो, और इससे लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो क्या करना है, रिवाइज और रियलाइज, अचीव, नॉट विजुअलाइज, नॉट इमेजिन। ओके, ओम शांति। चलिए अभी हम व्हाइट लाइट में चलते हैं सूक्ष्म वतन में बाबा के पास, दिव्य बुद्धि दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का नेत्र बाबा को दिल में इमर्ज करेंगे और बाबा के पास दिव्य बाबा को दिल में दिव्य दृष्टि रूपी ज्ञान का नेत्र इमर्ज करके ज्ञान पवित्रता शांति और स्नेह चार चीज इमर्ज करेंगे समझेंगे, फिर दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट एक्टिव करेंगे और बाबा की गोद में पहुंच जाए, अतिंद्र सुख का अनुभव करेंगे। आवाज देना, सूक्ष्म शरीर जब तक बनाया नहीं ना तब तक सूक्ष्म वतन में जाने सकेंगे, अतिंद्र सुख का अनुभव नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर मन हमारा सूक्ष्म शरीर है, संकल्पों को शुद्ध बनाना पड़ेगा, राइट। जब वो तभी बनेगा जब दिल से चित्त शांत होगा, एकाग्र होगा, वो तब बनेगा जब दिल में बाबा होगा, राइट, सच्ची दिल साफ दिल होगी तो तब हमारा शुद्ध संकल्प सकपति शुभ भावना होगी, हमारी वृत्ति रूहानी होगी, स्मृतियां जागृत हो जाएंगी रूहानी, तब सूक्ष्म शरीर तैयार होता है, राइट। किसी के प्रति थोड़ी भी अशुभ भावना होगी ना तो हम सूक्ष्म वतन में जा नहीं सकते। थोड़ा भी पास का विचार है, भविष्य का विचार आ रहा है, चिंता चल रही है तो ऊपर नहीं जा सकते। किसी को भी किसी का दुश्मनी है तो ऊपर जा नहीं सकते, राइट। यही टिकट है हमारे पास, राइट। और सूक्ष्म वतन में कौन रह सकता है, जिसने दिव्य दुआओं का खजाना जमा किया होगा, बेहद के निस्वार्थ भाव की सेवा की होगी ना, उतना समय हम बाबा की गोद का अनुभव कर सकते हैं, अतिंद्र सुख का अनुभव कर, आनंद का अनुभव कर सकते हैं। नहीं जमा किया होगा, स्वार्थ भाव से सेवा की होगी तो बाबा की गोद का एक सेकंड के लिए अनुभव करेंगे, नीचे आ जाएंगे, पास एयरपोर्ट पे पहुंच के, स्विट्जरलैंड पहुंच के वापस अगली फ्लाइट से नीचे, राइट। ऑप्शन,
बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी का, दो हाथ की ताली से धन्यवाद करें कि कैसे ज्ञान और साइंस दोनों का मेल करके हमें अतीन्द्रिय सुख और आनंद का अनुभव दोनों चीज बताई। अतीन्द्रिय सुख सूक्ष्म वतन की परिभाषा है और आनंद परम धाम की। हाँ हाँ, सूक्ष्म वतन निराकारी परम धाम, डेड साइलेंस परम धाम। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। सात गुणों की एनर्जी, इससे ही हमारा हीलिंग होता है ना। और सूक्ष्म शरीर हमारे मन के संकल्प जो है, शुद्ध संकल्प, वही सूक्ष्म शरीर है। बहुत कुछ डिटेल में समझाया।